जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री जगन्नाथ क्षेत्र से नीलाचल धाम की श्री जगन्नाथ देव भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की। तो आज इस गृह सुंदर गोपाल प्रभु का आदेश से आप लोग दिल्ली पार्थ सारथी के जो ब्रह्मचारी वृंद यहाँ ब्रजधाम एकत्रित हुए हैं, तो आप सबके संग पाने के लिए और हमको ये सुयोग देने के लिए सभी को मैं आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हमारे अधिदेव श्रीधामन के वृंदावन के ठाकुर श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधे श्याम सुंदर जी श्री श्री निताय गौर सुंदर और श्री प्रभुपाद के श्री चरण में ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको उनके अशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ऐसे मुझे कहा गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग इज दैट द सब्जेक्ट रोल ऑफ चैंटिंग रोल ऑफ चैंटिंग इन द लाइफ ऑफ ब्रह्मचारी। सच ए नाइस सब्जेक्ट बट आई एम सच ए रास्कल। रोल ऑफ चैंटिंग इन द लाइफ ऑफ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के जीवन में हरिनाम के जप का कितना महत्व है है ना। नहीं, आपको सब सुन करके अब सब पता भी होगा शायद, हमारे गौड़िया संप्रदाय के इष्ट देव श्रीमान महाप्रभु और उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे श्री स्वरू दामोदर जी, यद्यपि सारे दुनिया जानता था उनको दोनों सन्यासी ही करके, लेकिन वास्तविक दोनों ब्रह्मचारी थे, क्योंकि सन्यासी के नाम कुछ अलग होता है। ये दोनों यद्यपि सन्यास लिए थे लेकिन सन्यासी नाम धारण नहीं करते, ब्रह्मचारी नाम रखे थे, इसलिए उनको अधिकांश जगह में, यहाँ तक कि काशी में जो प्रकाशानंद एंड ग्रुप, उन लोग भी उनको सन्यासी करके नहीं मानते थे। बोले सन्यासी वैसे तो ले लिया लेकिन है तो ब्रह्मचारी, नाम तो सन्यासी का नहीं है, है ना। नहीं मानते नहीं थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनके एक विशाल सन्यासियों का जो समुदाय था उनको लेकर के जब काशी में रहते थे, और महाप्रभु सन्यास लेने के बाद नीलाचल पधारे, माघ मास शुक्ल पक्ष प्रभु करिला सन्यास, मकर संक्रांति का दिन, संक्रांति के दिन सन्यास लिए, उसके बाद में इधर उधर घूमते फिरते फिर शांतिपुर आए, फिर फाल्गुनर से आसी पहला नीला चले, मतलब फाल्गुन मास के पूर्णिमा, किस लिए इम्पोर्टेंट है फाल्गुन पूर्णिमा, महाप्रभु के जन्मदिन है ना, तो आपने जन्मदिन को पुरी में मनाए, दोलो उत्सव किए, उसके बाद में महाप्रभु का आपने आचरी धर्म परिधि सिखा ना, आचरण कैसे करते हैं जब सन्यास लिए प्रचार के लिए, तो प्रचार का शुरुआत ऐसे करते हैं, ओपनिंग ऐसे एक शॉट मारे, पूरा भारतवर्ष में हलचल मच गया, वन शॉट इन ओपनिंग शॉट। क्या किए, पुरी में जाकर सबसे पहले टारगेट किए, आउट किए सार्वभौम को, बोल्ड आउट कर दिए उसको, हाँ। सार्वभौम भट्टाचार्य को चैत्र मास में उनका उद्धार किए, सार्वभौम का एतादृश जो चमत्कारिक ढंग से जो परिवर्तन हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे, पूरे भारतवर्ष से सुविख्यात थे, इतने बड़े वेदांती, इतने बड़े ज्ञानी, पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के दी हेड प्रिस्ट, और बड़े बड़े शंकरपंथी के सन्यासी आकर उनसे ट्यूशन पढ़कर जाते हैं, हाँ, अपने सन्यास आश्रम में दृढ़ता रखने के लिए उनसे आकर के वेदांत आदि पढ़ करके जाते थे, निष्ठा प्राप्त करके जाते थे, इतने बड़े सुविख्यात महात्मा थे सार्वभौम भट्टाचार्य। दो भाई बड़े दिग्गज विद्वान थे, एक तो नवद्वीप में रहते थे, एक पुरी में रहते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का एतादृश परिवर्तन को देख करके पूरा उत्कल में महाराज गजपति प्रताप रुद्र देव से लेकर के कटक, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर आदि में जितने से मुख्य मुख्य स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जितने बड़े बड़े ध्यानी, ज्ञानी, म्यानी और साधक जो अपने आप कुछ मानते थे, जो सब थे, सभी का एक साथ में फ्लैट डाउन हो गए, सब राजा तक आकर बोले सार्वभौम भट्टाचार्य, वो बदल गया, ऐसे बदल गया कि कोई हिसाब किताब नहीं उसका। सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं कहते हैं कि मेरा हृदय तो साक्षात लौह पिंड जैसा था। कैसा था लौह पिंड, ऑर्डिनरी लोहा नहीं, जंक लग जाए, स्टेनलेस स्टील का, हाँ, जंक भी जाना ना लगे, लेकिन उसको आपने पिघला करके पानी पानी कर दिए, कितने हाई टेम्परेचर आपका होगा, प्रचंड प्रताप होगा, यही से स्टेनलेस स्टील को ब्लास्ट फर्नेस में भी डालने से नहीं जलेगा, आप उसको यही से ही गला करके पानी करके बहा दिए। ये सार्वभौम भट्टाचार्य एक मुखद गा रहे, वो स्वयं बता रहे, इतने परिवर्तन हो जाना, पानी पानी कर दिया, सचमुच पानी पानी कर दिया। जहां हरि का नाम होगा सर्व हटाचे रोते कांपते वहां पहुंच जाते। अब गौरांग महाप्रभु देख करके, गौरांग भक्त को देख करके इतने क्या बदल गए, ऐसा बदल डाले। बस उसके बाद हम फिर रहे नहीं, दक्षिण भारत चले गए। बोले एक शर्ट काफी है, ज्यादा खेलना क्या है, पीछे में रह करके दिन भर बिताना। एक शर्ट में पूरे ओडिशा की प्रचार हो गया। अब दक्षिण चले, बोले यहां रहना कोई जरूरत नहीं। एक शर्ट में ये प्रीचिंग स्ट्रेटजी है। ऐसे तैसे लोगों के पास ऑर्डिनरी जाकर कहाँ टाइम खराब करे, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करे। एक ऐसे आदमी को चुनो जिसका पीछे काम करो, बस उसी से ही सब हो जाएगा, होलसेल थोक में ही काम हो जाएगा, है ना। नहीं तो इसे महाप्रभु ने कर रहे थे। तो केवल ओडिशा में नहीं, सार्वभौम का परिवर्तन देख करके काशी में जो तभी जमाने में मायावादियों का गढ़ था, आज भी है, हैं? तो वहां जो हेड थे प्रकाशानंद जी, प्रकाशानंद सरस्वती, कई हजारों सन्यासियों के गुरु बन करके वहां बैठे थे समुदाय लेकर के। वो भी बोले, बोले पता नहीं ये सार्वभौम प्रचंड विद्वान उसको बदला दिया, बड़े इंद्रजाली होगा, इंद्रजाली समझते ना, बड़े मैजिशियन होगा लगता है, कुछ जादू वादू किया। लेकिन यहां काशी में उसका जादू नहीं चलेगा, इंद्रजाल नहीं चलेगा, मैं खुद बैठा हूं इधर, सारे चप्पे चप्पे मेरा लोग बैठे हुए हैं, यहां नहीं चलेगा वहां जाल जाल उनका, यहां जादू नहीं चलेगा, जादू टोना। तो इस बात को सुन करके दो ही भगत थे पूरे काशी में महाप्रभु के, एक चंद्रशेखर आचार्य, एक तपन मिश्र, दोनों को इतने दुख होता था। तो महाप्रभु जब गए वृंदावन जाते समय, काशी होकर गए, तो बहुत रो रो कर प्रार्थना किए थे। बोले अगर आप कुछ नहीं करेंगे, हम आपके निंदा सुन नहीं सकते, हमारा निंदा करे कोई बात नहीं, लेकिन आपके निंदा, आप इधर रह कर गए इतने निंदा हम सुन नहीं सकते, हम सुसाइड कर लेंगे। महाप्रभु बोले नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखेंगे देखेंगे, मैं आता हूँ, देखेंगे, वृंदावन से आता हूँ, कुछ करेंगे। महाप्रभु वृंदावन से आए तो उनका तही जिक्र था, तो भगवान ने सोचे कि बोले ये दोनों बड़े दुखी होते हैं, कुछ करना चाहिए। तो वहां भी एक खेल शुरू किए, तो कीर्तन किए, कीर्तन किए, और महाप्रभु का जैसे कीर्तन होता है लोग पीछे पीछे भागेंगे, इसे उदंड कीर्तन नाचते गाते रोते चलते। उसको सुनकर तो वो लोग तो ऐसे क्रिटिसाइज थट्टा उड़ाए, बोले देखो ये क्या हो रहा है, ये नोटंग की तरह नाच कर रहा है, घूम रहा है, ये कोई सन्यासी है, हैं? तो उल्टी और बदनाम के, बोले कान महाप्रभु ये तो और हो रहा है, अब कीर्तन कर रहे हैं और ज्यादा छिड़ा रहे हैं। तो भगवान की प्लानिंग ऐसे होता है। दूसरे दिन उसी दिन कीर्तन से आए, दोपहर को एक दक्षिणात्य ब्राह्मण आया, आकर के महाप्रभु को इन्वाइट किया। महाप्रभु किसी मायावादी सन्यासी को मिलते नहीं थे, न उनका घर में जाते थे, कभी नहीं मिलते थे, सभी जानते हैं, उनके सेवक सभी को पता है, वो नहीं मिलते हैं। और वो आके निमंत्रण किया कि आप सन्यासी है, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सब, हमारा घर में कुछ सब है, मैं सारे सन्यासियों के लिए भंडारा किया हूँ, और आप इतने सुंदर सन्यासी है, बड़े अच्छा रूप है, तो आपको निमंत्रण करने आया हूँ, अब चलेंगे। तो सभी आश्चर्य बोले हट यहाँ से, तुझे थोड़ी जाएंगे नहीं, तू सबको बुलाया, और सबके साथ उनको अकेला बुला तो कोई बात होता, सारे मायावादी गोष्ठियों को बुलाया और उनको महाप्रभु लेकर जाएगा, मना करे करेंगे जो करेंगे, मैं तो आया हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ। अद्भुत बात है, सबसे पहले बार महाप्रभु आज बोले हैं चलो, सुने कि सारे प्रकाशानंद ग्रुप भी आएंगे, हाँ उनको भी बुलाया, सब आएंगे, और आपको भी बुला रहा हूँ, हाँ मैं चलूँगा। सुनकर सब आश्चर्य हो गए, बोले क्या बात है भाई, हाँ तो बड़ा अद्भुत बात है, राजी हो गए जाने के लिए, राजी हो गए। दूसरे दिन जाना था, वो चले। अब जा करके पहुंचे तो ऑलरेडी लेट में गए, पैदल में जाना था, वो तो निकाली तरह, बाकी तो अपना अपना सवारी है, पालकी है, भाई कैसे कैसे आए अपने थाट वाट से। वो आकर के पूरे गोष्ठी बैठे हुए थे, बनारस का एक विशाल मंच बना हुआ था, अरे कई हजारों अब सन्यासी अपने अपने शासन लेकर से बैठे थे। बीच में चांदी के विशेष आसन में प्रकाशानंद सरस्वती विराजमान थे। महाप्रभु गए, आपने ढंग से चुपचाप चलते चलते गए, जा करके जहाँ वो लोग सन्यासी का सब पदधौत किया गया था, पैर धोगा था, पानी फानी हुआ था सब, वही जाकर बैठ गए, बैठ के नीचे बैठ करके आपने ये बढ़ा दिए, रेगुलेटर बढ़ा दिए, मतलब महाप्रभु का जो शरीर से कांति, जो उनका तेज, जो चमक निकल रहा था, उसको रेगुलेटर को फुल में ले लिए, वहीं बैठ करके, तब तक नहीं वहीं बैठ कर कर दिए। अरे बाप रे, सब बोले सूरज तो एक आकाश में है, इधर रखता है 10-20 हजार की लाखों सूरज इधर उधर होगा ना क्या, इतने लाइट सब इसी से करने लगे सारे। थोड़ा सा धूप आ जाए सर के ऊपर, हमारा हाल खराब हो जाता है ना, और एक साथ मिलियन ऑप्शंस, जब प्रभु वोल्टेज बढ़ा दें तो सूर्य क्या क्या ताकत है उनके सामने करे, इतने तेज निकला, हिट नहीं दिए केवल लाइट छोड़े, और सब ऐसे ऐसे करने लगे, दिखाई नहीं पड़ रहे। आप देखे थे तो ये सन्यासी आया था, जिसको चिढ़ा रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही आया जाकर इतने तेज उसमें से, आप कुछ बोलना चला, इतने भी तो समझ गए कि तो कोई साधारण है ही नहीं। स्वयं प्रकाशानंद खड़े हो गए मंच पर, खड़े होकर के उनके साथ में उनके वो 10-20 उनके चेले चामुंडे सब खड़े हो गए, वो चले स्वयं उतरे पंडाल से, उतर के ऐसे हाँ 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 इसके बोले चलिए चलिए, आप हमारे पंथ के सन्यासी, हमारे संप्रदाय के है, चलिए यहाँ कैसे बैठ गए, चलिए उनको उठा करके ऊपर ले जा रहे, बस फिर वोल्टेज नॉर्मल कर दिए, फिर इतना ही था फिर नॉर्मल कर दिए, फिर उनको उठा कर ऊपर लेकर गए बड़े हनुमान। तो यहाँ पे जो वार्तालाप है उसको थोड़ा देखते हैं। क्या कहते हैं, तो लेकर के बसाइले सभा मध्य सम्मान करिया, आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, स्वयं आकर हाथ पकड़ करके बसाइले सभा मध्य सम्मान करिया, बिल्कुल बीच में लेकर अपने पास में सीट दे करके बैठाया, बड़े सम्मान करके, है ना। पृछिल तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। पूछा कि आपका नाम कृष्ण चैतन्य है ना, कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी के नाम नहीं होता है ना, सन्यासी के नाम है नहीं होता, ब्रह्मचारी के नाम। बोले तुम्हारा नाम कृष्ण चैतन्य है, किस भारती के शिष्य है आपने, सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रह यही ग्रामे, हमारा सांप्रदायिक तो सन्यासी इसी काशी में रहता है, की कारण आमा सवार ना करो दर्शन, हम हमारे पास क्यों नहीं आते, हम इतने सीनियर डिवोटी हैं इधर, अपने घर का है, अपने मंदिर का है, तो हमारे पास क्यों नहीं आता। सन्यासी हया कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन। सन्यासी होकर के तुच्छ काम कर रहा है, रोड में नाच रहा है, गा रहा है, कीर्तन कर रहा है भावुक की तरह, छे ये कोई काम होता है सन्यासी का, ये सब काम होता है। सन्यासी सारे वर्ण का गुरु है, सारे आश्रम का गुरु है। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी र धर्म, सन्यासी हो तो आपका धर्म कर्म क्या होना चाहिए, वेदांत पठन ध्यान सन्यासी र धर्म, तहां छाड़ी करो के नहीं भावु के कर्म, उसको छोड़ कर के क्या सेंटिमेंट, भावु की तरह काम करता है, बड़ी दिस प्रभाव देखिए तुम्हारा साक्षात नारायण, देखने में तो लगता है कि साक्षात नारायण हो, तेजी से निकलता है। हीनाचार करो के ना हिते के कारण, ये हीनाचरण क्यों करता है, इतने तेजस्वी पुरुष हो फिर हमारा संप्रदाय से संन्यास भी लिए हो, तो ये थर्ड क्लास काम कर रहा है, थर्ड फोर्थ क्लास काम, सड़क में घूम करके ये हीन काम क्यों कर रहा है, की कारण है। प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण, गुरु मरे मूर्ख देखी करी ला शासन। तो महाप्रभु बोलना शुरू, ये जैसे ही सब बोले महाप्रभु हाथ जोड़ करके बड़े नम्र भाव से बोल रहे हैं, कि प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। सबसे पहले उत्तर महाप्रभु ने दे रहे हैं पूरे सन्यासी समुदाय को, कहले क्या बताऊं, आप जानना चाहते हैं इसका कारण क्यों ऐसा कर रहा हूं कि जब मैं गया था गुरुजी के पास, गुरुजी ने मुझे देख लिए पास में, देख करके समझ गए मैं महामूर्ख हूं गंडा मूर्ख, तो मुझे मूर्ख देख करके मुझे शासन किए। ये बात कौन कर रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं, हजारों सन्यासी के सामने कह रहे हैं। महाप्रभु का जब नवद्वीप में रहते थे, स्कूल में पढ़ते थे, उनका नाम क्या था? निमाई पंडित था ना, मूर्ख था क्या? निमाई मूर्ख ऐसे कहते थे क्या? निमाई पंडित नाम था ना। अब ये वो क्या कह रहे हैं? नवद्वीप में सारे नवद्वीप में जितने गुरु थे उनके नाम सुनने से पीछा फोड़ जाता हूं। हाँ, केवल गुरु नहीं, जितने स्कॉलरली स्टूडेंट थे, महाप्रभु कोई रास्ता में आते हैं देखे तो 10 फुट सामने से साइड कर भाग जाएंगे, कुछ पूछेगा अभी यही के वही डिबेट कर देगा खड़े खड़े। हाँ, ऐसे भाग खड़े होते थे समुदाय। आचार्य भट्टाचार्य जितने थे नवद्वीप में होलसेल, एक बार तो सब ऐसे ही सुनते थे क्योंकि महाप्रभु गंगादास टोले में पढ़ते थे, बाकी बड़े बड़े आचार्य और भी थे सब सुनते थे ऐसा, क्योंकि स्कूल में घाट में बाट में स्नान करते समय ऐसे ऐसे युक्ति करते थे, दूसरे दूसरे स्टूडेंट भी जाकर अपने टीचर को बताते ऐसे ऐसा बात करता है, ये सब सुनते थे। लेकिन ऐसा एक घटना हुआ था, एक बार पूरे भारतवर्ष में चांचल्य सृष्टि करने वाला एक बड़े दिग्विजय पंडित निकला, जिसका नाम था काश्मीर का था केशव काश्मीरी। सारे प्रांत के पंडित को जीतते जीते काशी भी आया था, काशी में ही जीत गया, सर्टिफिकेट लिया। काशी वाले चलो हम तो हार गए, लेकिन आजकल न्यायिक और मीमांसा वाले नवद्वीप में भरे पड़े हैं, वहां जाकर सर्टिफिकेट ले तो फिर दिग्विजय माना जाएगा। तो वहां तब गए, नहीं चला ये नवद्वीप, जब काशी विजय नहीं, नहीं यहां पड़े हैं बड़े बड़े भट्टाचार्य सब वहां बैठे हैं न्यायिक सब। तो बोले चलो, तो उन्होंने पूरा सदड़बड़, कई लोग उनके फलेर हो गए थे, और हाथी में बैठ करके बाजे गाजे बजा करके झंडा उड़ा करके बड़े नाराबाजी के साथ बड़े कई घोड़े हाथी में पोथी, कई लाइब्रेरी चलता था उनके साथ में, कई पंडित चलते थे, पूरा चलता था विशाल प्रोसेशन, ध्वजा उड़ा करके जय जयकार करके चलते पूरे प्रोसेशन निकला जाकर नवद्वीप। नवद्वीप पहुंचने से पहले एडवांस नोटिस भेजा था उन्होंने समुदाय नवद्वीप के पंडित वर्ग को, आचार्य वर्ग जिसे न्यायिक मान सबको भेजा कि मैं आ रहा हूँ, प्रस्तुत हो जाइए तर्क करने के लिए, मेरे साथ तर्क करके अगर मैं आपको विजय नहीं कर पाऊंगा, काशी वाले कहते हैं कि नवद्वीप को विजय करके आओ तब विश्व विजय माना दिग्विजय माना जाएंगे, तो मैं आप बाकी रह गए, आप तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ। तो जब खबर नोटिस पहले भेज दिया तो सारे पंडितों का पानी पानी हो गया नवद्वीप में, बोले क्या करें, इसे सबको हरा कर आया केशव काश्मीरी, हम लोग को क्या करें, सब डर गए, डर के मारे सब अपना अपना छुट्टी एप्लीकेशन डाले, कोई बोला कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया, कोई बोला नहीं हमारा घर में ये है वो है, मैं कई प्रकार से बोले आउट चले जाएंगे, रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे, लेकिन रहेंगे नहीं अगर वो आएगा तो ऐसे ही बदनाम होगा फिर, तो बड़े फंस गए, बोले छिपेंगे तई बदनाम, सामने जाएंगे तो उल्टी नाक कटेगा, क्या करें, बड़े विचार में इतने परेशानी में पड़ गए। डेली उनका मीटिंग होता, स्कूल बंद कर दिए, इतनी परेशानी आ गया, सारे टीचर बैठ के सारे पंडित बोल करके, तो एक पंडित बोले ये लड़का निमाई बड़ा तेज है, उनको लगा देते हैं। ओहो सबको मन में आया, बोले देखा जाओ एक स्टेप तो लेते हैं, एक चिट्ठी लिखे, निमाई से कंसल्ट भी नहीं किए थे, बिना कंसल्ट किए टाइम ही नहीं था, सब पूछा है कंसल्ट करें, बिना कंसल्ट किए वो चिट्ठी लिखे, उनका जो मैसेंजर आया था कैसे कैसे उसको चिट्ठी देकर भेजे कि ऐसा जी अब हम तो नवद्वीप के शिरोमणि आचार्य हैं, महामहा न्यायिक न्यायाधीश हैं, भट्टाचार्य आदि हैं, आप इस मामले में हमसे तर्क करेंगे अर्थार्थ करेंगे तो अभी हमारे स्टूडेंट सब हो जाए सेकंड सिटी के हमारे पास देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे साथ तर्क करने क्वालिफाइड है कि नहीं आपने, सीधा हमारे पास करेंगे ये तो आप हमारे लायक है कि नहीं हम देखना है ना नहीं। तो इसलिए हमारा स्टूडेंट है, तब जो मैंने कैमरा था नहीं तो फोटोग्राफ भेज दिए होते, लेकिन पूरा आईडी दिए थे उनका, इसका नाम गाम ऐसा है ऐसा है, उनके साथ अगर आप भिड़ जाओ अपने पहले उनके साथ तर्क हो जाए, अगर यहाँ से उतरे तब फिर हम लोग के साथ बैठेंगे। तो जैसे खबर पहुंचा केशव कश्मीरी के पास, केशव जी बोले अच्छा ये पंडित मंडली मुझे एक बच्चे साथ भिड़ाने के लिए कहते हैं, उनका तर्क करने के लिए कौन है, तो बोले हंसने लगे, बोले चलो सर डर गए ये बच्चा को सामने करते हैं, चलो देखते हैं पहले बच्चे के सामने क्या होता है, कैसा स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट को ढूंढते ढूंढते केशव कश्मीरी आए, नवद्वीप पहुँच करके पता लगाए, सारे नवद्वीप में प्रसिद्ध थे, सारे नगर भ्रमण करते थे, बोले शाम के समय था, बोले अभी तो गंगा किनारे बैठा होगा अपने ग्रुप लेकर के, शाम के समय गंगा जी किनारे बैठता है वहीं चर्चा चलता है उनका, सब लोग जानते, बोले वो जाओ एक घाट में बैठा होगा पाठा। तो फिर वहीं पहुँचे, शाम हो रहा था, अस्तकालीन सूर्य इस समय में गोधुली वेला में जा करके पंडित जी और हजारों मंडली के साथ पूरा प्रशासन के साथ बाजे गाजे ध्वनि के साथ जाकर पहुँचे। वो दूर से देखे, उनको पता नहीं था, वो सुने थे, बोले उनके स्टूडेंट लोग से बोले तो बड़े पंडित केशव कश्मीरी आ रहे हैं इसे इसे इसे, तो आ करके उनके पास पहुँच करके लोग भेजा कि पूछो यह निमाई है क्या, जाकर पूछे, उसने बोले हाँ निमाई पंडित यहीं बैठे ये तो निमाई है, जाकर बता, बोले यही तो जो लड़का बैठा ना बीच में वही है, तो सामने बैठ खड़े थे सर ग्रुप में सब लोग, ही लड़का बैठा है, यंग लड़के थे बिल्कुल 12-14 साल के थे स्टूडेंट। तो उनको फिर बुलाए, बुलाकर बोले देखो इसे लेटर आया है आपके पंडित महासभा नवद्वीप से, और आपके बारे में बोले हैं, आपके साथ में तर्क करने के लिए आया हूँ, आप प्रस्तुत हो जाओ। तो बालक निमाय पंडित बोले आप इतने बड़े दिग्गज पंडित थे, मैं आपके बेटा के समान हूँ, मेरे साथ आप तर्क करेंगे ये युक्ति युक्त है क्या, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा अहो भाग्य है आप जैसे विद्वान पंडित यहाँ पहुँचे, हम आपका दर्शन किए, तो बेकार नहीं होना चाहिए ना, फिर क्या बोलते ना, अभी शाम के समय है और गंगा जी की आरती के समय है, आप ऐसा करिए तो गंगा जी के कुछ महिमा वर्णन कीजिए, हम सुनना चाहते हैं आपसे, प्रार्थना की सबके सामने। महाप्रभु का एतादृश वाणी, माने महाप्रभु जो बात करते हैं ना ऐसे मीठे मीठे बात, हाथ जोड़ के नम्र से करें कोई भी बोल्ड आउट हो जाएगा तो उसको सुन करके जितने उनके पार्टी लोग थे बोले वाह कितना अच्छा लड़का, कितने मीठे मीठे बढ़िया नम्र भाव से आवेदन कर रहा है, करना चाहिए, वो भी सोचे कि हाँ ठीक है ठीक है, खुश हो गए, आप सीना तान करके खड़े हो गए, दे जड़वत तरलम गान करने लगे गंगा की स्तुति, वायु वेग से स्तुति करने लगे, देखते देखते 100 श्लोक तुरंत ही रचना किए और छंद अलंकार के साथ आवृत्ति करके सुना दिए, इतने पंडित थे तुरंत। हम कोई पंडित रचना करेंगे 10 बार तो लिखेंगे काटेंगे फिर लिखेंगे काटेंगे फिर करके फाइनल करेंगे तो 2 महीने लग जाएगा, उसके बाद में फिर सुर सुंदर आगे छदरण कर वो भी होगा कि नहीं पता नहीं, जतिपात होगा नहीं होगा, लेकिन वो वही कोई ना पेपर ना पेन ना कुछ रफ नथिंग, वही खड़े खड़े मन में रचना किए और सारे जतिपात करके तुरंत गा करके सुना दिए उन्हें। सब जितने उनके पार्टी के लोग थे सबका जैसे पैर 2 चाखंड ऊपर मिट्टी से उपट गया, देखा हमारे गुरु जी देखा कैसे ऐसे धुरंधर विद्वान, देखा क्या श्लोक क्या आवृत्ति क्या वंदना। और महाप्रभु के साथ जितने उनके निमाय पंडित के साथ जितने ग्रुप स्टूडेंट थे, 50 करीब स्टूडेंट उनके साथ भी थे, तो वो भी सब देख करके त्रस्त हो गए, बोले मानना पड़ेगा इतने धुरंधर विद्वान है, क्या उच्चारण क्या श्लोक क्या स्तुति क्या उन्हें कितनी जल्दी से इतने बड़े विद्वान। तो महाप्रभु ये सुन करके घर में खड़े हो गए, तो महाप्रभु आके प्रणाम किए, बोले वाह बाकायदा मानना पड़ेगा सरस्वती का आपका कंठ में विराजमान है, क्या सुंदर स्तुति है क्या पांडित्य है क्या शब्द है क्या अलंकार क्या छंद, ऐसे वर्णना के तो और खुल गए और बढ़ गए, उनके पार्टी लोग तो बोलो तो बढ़ गए। आप क्या जीते, तब इतने करने के बाद जब बिल्कुल फुल में आ गए सब, तो महाप्रभु बड़े नम्र हो, लेकिन लेकिन व्हाट इज लेकिन, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ। गलती मेरे स्तुति में, मेरे रचना में गलती हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं, छोटा सा हुआ। कैसे? वो तो विश्वास नहीं कर रहे थे, मैं तो इतनी जल्दी से गाया गया, कुछ पता थोड़ी होगा, कोई श्लोक में याद थोड़ी रखा होगा, टेप फेप तो था नहीं कि रिकॉर्डिंग कर ले। महाप्रभु बोले जो 49th श्लोक है उसका सेकंड लाइन का जो थर्ड शब्द है ना, वो आप ऐसे गड़बड़ी किए। बाप रे बाप, ऐसे याद रखा इतने नंबर श्लोक का सेकंड लाइन का इस बात का ये शब्द गलत है। उसको सुन करके उनके जैसे गलती बोले थे तभी तो 99+ टेम्परेचर आया था, जैसे बिल्कुल नोटिफाई कर दिया ये पॉइंट ये शब्द गलत है करके, तब तो 104 के आसपास में खड़ा आ गया उनका, मतलब केशव काश्मीर का, बाकी लोगों का तो सब पसीना उतर रहा था, बुखार आकर निकल भी चुका था। आप जब बोल दिए कि भाई आपने बोले कि भवानी भर्तु गंगा जी को, हाँ बोले भवानी शब्द का अर्थ है भव के पत्नी, भव माने शिव, भवानी माने भव के पत्नी, भर्तु माने स्वामी। भवानी भर्तु ये शब्द का अर्थ ऐसे अर्थ होता है शिव जी के पत्नी के स्वामी, है ना, भव माने शिव, भवानी माने शिव की पत्नी, भर्तु माने पति, तो शिव जी के पत्नी के पति, ऐसा कहने से सुनने में लगता है कि शिव जी की पत्नी के कोई दूसरे भी पति पति थे क्या, क्योंकि शिव जी की पत्नी कहा, फिर पति कहना क्या जरूरी है, मतलब और भी कोई एक्स्ट्रा पति थे क्या उनका, गड़बड़ लगता ना भाई। शिव स्वयं कह दे वो तो सब जानते हैं, भवानी भव कहने से, भवानी कहने से पता चल गया कि शिव की पत्नी है, शिव उनके पति है, फिर भवानी भर्तु ये कहने का मतलब क्या था, भर्ता तो शिव जी है, क्योंकि दूसरा कोई भर्ता है क्या उनका, दूसरा कोई पति है क्या, ऐसे शब्द कैसे किया, ये शब्द तो ठीक नहीं। अरे बाप बिल्कुल प्रूव्ड हो गया सबके सामने। अब इतने उनका हालत खराब हो गया, अब बोले ये तो कुछ नहीं, लेकिन बाकी इस श्लोक में इतने में ये और फटाफट 10-20 निकाल दिए। अब उनको मैंने सेंसलेस होना केवल बाकी ही था। अब ये जब सुने तो निमाय पंडित के पास जितने स्टूडेंट थे वो अब ताली ताली बजाने ही वाले थे, कुछ बोलने वाले थे, वहां पर बोले चुप, अब मर जाएगा वहीं पे, यहीं पे मर जाएगा, स्पॉट डेथ हो जाएगा, कुछ कहो मत, मत बजाओ, ताली बंद करो, उसका ये हाल हो चुका है कि अभी प्राण निकल जाए, छोड़। तो सबको बंद करा करके तुरंत बंद करो, नहीं 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 ऐसे हो जाता है, इसे बड़े बड़े विद्वान को ऐसे, आप जैसे विद्वान प्रशंसा शुरू की, जान तो आए, नहीं तो निकल ही रहा था जान। तो बिल्कुल टेम्परेचर को नॉर्मल किए, तब तो कुछ नहीं बोला, मुंह मोड़ करके सीधा चला गया आवास में, जहाँ गेस्ट हाउस बुकिंग किया था वहां चला गया। और सारे लोग तो पहले से ही काला पड़ चुके थे, उनके पार्टी के लोग जो थे, घोड़े हाथी कोई चें चाँ कें कांग बाजा बाजा कुछ नहीं बजा, सब चले गए। रात को बड़ा फीस्ट हुआ था, कोई नहीं खाए, फास्टिंग, जाकर सो गए वो तो, बाकी सब तो सो गए, वो तो बिल्कुल सो नहीं पाया, सारा सारा रात व्यस्त था, कैसे हो सकता है। सरस्वती देवी के पास बैठ करके आराधना शुरू कर दिया, अर्धरात में देवी प्रकट हुए, बोले देवी ये कैसा कर दिया है कि बच्चा के सामने हैं, उनके स्टाफ के सामने मुझे ऐसे बज्जती कर दिया, पहले बोलता मैं नहीं आता, ऐसे कैसे कर दिया। ये क्या है आपका वरदान? देवी बोले रे मूर्ख, मैं तुझे वरदान दिया था तो कोई तुझे जीत नहीं सकते, हाँ मैं तो इसी विश्वास कर आया था कोई कोई जीत नहीं सकता मुझे, लेकिन ये क्या आज कर दे बच्चे ना, मूर्ख उसको बच्चा समझता है, हाँ? वो मेरे मालिक है तो उसके सामने हारना है तो जीत है, उनको जीता जा सकता है ना क्या। तब देवी जी ने उनको समझाया, और ये समझते समझते अर्धरात्रि से मंगलरात्रि टाइम हो गया। बोले अब भी भाग करके जाओ, अभी भी वो वेट कर रहे हैं, जानते हैं कि तेरा हाल क्या होगा, जाकर के उनकी शरण में जाओ। तो भागे भागे वो 4 बजे गया, जाकर महाप्रभु बैठे थे, जानते थे वो आएगा, तो उनको वहीं पर उनको दीक्षा शिक्षा देकर भेज दिए। बोले जाओ वृंदावन तुम्हें भजन करने के लिए। तो उनका पंडित, इतने बड़े दिग्गज पंडित थे महाप्रभु, तो आज स्वयं आपने आपको क्या परिचय देते हैं? मैं मूर्ख, महामूर्ख था, पढ़ना सुनना आता नहीं था, इसलिए गुरुजी ने मुझे बोला। तो क्या पढ़ेगा वेदांत? आप लोग सुना पंडित थे, पढ़ते हैं, तो उसके परपट में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिखते हैं। इस श्लोक के परपट अगर पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी भी लिखे हैं शायद, उनके परपट में बोलते हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इसे लिखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जो जगद्गुरु हैं, संपूर्ण 14 भुवन के पति हैं, सकल ब्रह्मांड के सारे, भगवान स्वयं कहते हैं ना गीता में, वेदेश सर्व अहम एव वेद्यो, सारे वेद से जानने लायक तो मैं ही हूँ, मैं ही वेदांत करता हूँ, और वेदवित मैं ही हूँ। वो स्वयं वेद का असली तात्पर्य निर्णय करने के लिए ये स्वयं अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि कौन वेद का रहस्य को जान सकता है। निरपेक्ष रूप में अति सरल नम्र भाव से कैसे वेदांत का सार किया है उसे प्रकाश करने के लिए महाप्रभु स्वयं अपना आचरण से सिखाते हैं। मूर्ख होना पड़ेगा, इतने नम्र होना पड़ेगा। ऋणादपि सुनिचे न तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन। सारे वेद वेदांत उपनिषद का संपूर्ण सार एसेंस को सरल भाव से प्रकाश करने के लिए महाप्रभु स्वयं इतादृश आचरण कर रहे हैं कि आपने आपको मूर्ख कर रहे हैं। सो मूर्ख नहीं थे, इस कलयुग में सारे जनता इस तरह मूर्ख है, मूर्ख के युग है, मूर्ख पड़ा है, सारे मूर्ख। इसलिए बोलते हैं इस मूर्ख लोग वेदांत क्या पढ़ेंगे। ये बात कौन कह रहे हैं? स्वयं वेदविद, वेदकर्ता, वेद के वेद्य वस्तु स्वयं महाप्रभु भगवान स्वयं कहते हैं कि ये कलयुग में लोग सारे महामूर्ख है, वेद क्या पढ़ेंगे, उपनिषद क्या उनका सार समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो वेद के सार कैसे जानेंगे, क्या करेंगे? गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, मूर्ख तुमी तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। बोले तू तो मूर्ख हो, तो सब सुन रहे थे। बोले फिर आपको मूर्ख करके तो सर्टिफाई हो गया, फिर क्या? बोले ना मुझे एक्सेप्ट तो किए, बोल कर बोले तू वेदांत भंत पढ़ नहीं सकता, पढ़ा लिखना आता नहीं तुझे, फिर क्या करना है? ना कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, केवल कृष्ण मंत्र के जप करो। कृष्ण मंत्र क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र दे दिए। बोले सदा सर्वदा इस मंत्र को जप करो, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। कृष्ण मंत्र हैते सवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पारे पावे कृष्ण र चरण, कृष्ण मंत्र, इस मंत्र से संसार के मोचन हो जाएगा, इस मंत्र से कृष्ण के चरण प्राप्ति होगा। नाम बिना कलि काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। ये सब गुरुजी बता रहे हैं, बोलते मैं सुना था कि कलि काल में और कोई धर्म नहीं है। नाम बिना कलि काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार यही शास्त्र मर्म, सारे मंत्र का सार मर्म यही है। तो इसलिए सारे वेदांत उपनिषद धर्म का सार सर्वस्व को बड़े मूर्ख बनकर के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं महाप्रभु अपने आचरण में कि यही किए तो मैं यही कर रहा हूँ। तो जितने हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वेद उपनिषद आती हैं और जो सभी शास्त्र पुराण है, सभी का सार सर्वस्व, और जितने मंत्र आदि है उसका भी सार सर्वस्व क्या है? ये भगवान का नाम है, महामंत्र है, और उसी को जप करने के लिए गुरु जी बोले उसे पढ़ना नहीं है। मूर्ख लोग क्या पढ़ें, पढ़ नहीं सकता हूँ। तो सारे सुन रहे थे उनको, बोले ऐसा मतलब वही प्रमाणित करते हैं सारे महामूर्ख आप भी सब है, और वेदांत वेदांत पढ़ रहे हैं, शर्म नहीं आ रहे आपको? बोलते हैं वेदांत पढ़ रहे हैं, सन्यासी वेदांत पढ़ना चाहिए, वेदांत पढ़ना इस युग का धर्म है। तो फिर बोले माने सारे सन्यासी थे ये सब सुने, सुनकर बोले कोई एविडेंस पूछे नहीं, मन में सोच रहे थे ऐसा बात कर रहा है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं दे सकता क्या? महाप्रभु ये बात कह करके आपने नम्रता से कहे कि बोले मैं तो ऐसे मूर्ख हूँ, गुरु जी ने मुझे डांट करके बोले तू पढ़ना वेदांत पढ़ नहीं सकता, ये मंत्र जप करो। तो एक श्लोक में कंठ कर लिया, गुरु जी ने कृपा से मुझे सिखा था, बड़े याद करके मेमोराइज कर लिया उसको। अब मुझे पता नहीं ये कोई वेद शास्त्र में है कि नहीं, लेकिन मैं उसको याद किया हूँ। आप लोग तो बड़े बड़े पंडित हैं, मैं बोलूँ आप थोड़ा सुनकर बताएंगे कोई शास्त्र पुराण में है क्या श्लोक, प्रामाणिक है कि नहीं? तो बोलो 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 क्या बात है? ए तो बोली एक श्लोक सिखाई लमोरे कंठे करी, ये श्लोक करी ह विचारे, मैं इस श्लोक को कंठ किया हूँ, आप थोड़ा विचार करे देखिए, अर्थ मुझे आता नहीं है श्लोक का, मैं याद कर लिया बस, मीनिंग नहीं जानता हूँ उसका। गुरु जी ने बोले थे कुछ श्लोक याद कर, एक श्लोक याद कर लिया हूँ, आप लोग तो पंडित है थोड़ा अर्थ मुझे बता देंगे, बोले बोलो। तो बोलने लगे महाप्रभु, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा, बोल करके बोले ये श्लोक मैंने याद किया हूँ, ये श्लोक कोई है क्या शास्त्र पुराण में? ये तो बृहद नारदीय पुराण का है ना? अच्छा है शास्त्र बहुत अच्छा, उसका थोड़ा मीनिंग क्या है, अर्थ थोड़ा बताएं, आप लोग बड़े बड़े पंडित थोड़ा बताएंगे उसका थोड़ा मीनिंग बताएंगे। और जो प्रकाश नंद सामने खड़े थे और बाकी सारे आनंद सब खड़े थे, सारे आनंद का आनंद फ्यूज उड़ गया, वही आनंद पार्ट और रहा ही नहीं, अपोजिट पार्ट आ गया, कोई सब निरानंद हो गए। आप मरे अर्थ करे तो फंसे, नहीं करे तो फंसे, आप करे क्या? ऐसे श्लोक बोल दिए, उसको अगर अर्थ करेंगे श्लोक का अर्थ क्या जानते ना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही सारे, और इसी कलिजुग में और कोई उपाय नहीं, नस्त परतरो उपाय, और कोई उपाय नहीं। श्लोक अर्थ अगर करेंगे तो फिर कैसे कहेंगे वेदांत पढ़ना है, अर्थ नहीं करेंगे मूर्ख पंडित किसने किसने। अब इसी तरह से फंस गए मंच के ऊपर, ओहो हो हो, जैसे केशव कश्मीर का हाल हुआ था गंगा किनारे, उन्हीं का वंश के ऊपर यही हाल हो गया, बिल्कुल वही हाल, पसीना छूटने लगा। अब क्या करें, पूरे लोग भड़े पड़े, गैलरी फुल, उनके सामने तो उनका हाल खराब हो जाएगा, अभी अर्थ करें या ना करें, यही से बुरी तरह से फंस गए उन्होंने। अब करे तो खत्म वेदांत पढ़ना किसे कहते हैं, जब अर्थ करेंगे उसका श्लोक अर्थ यही है कि इस युग में कुछ नहीं, केवल हरि नाम ही सार है, बाकी कुछ नहीं, तो फिर किसी वेदांत पढ़ने के लिए कहते हैं क्या, धर्म कर्म कुछ नहीं? अगर अर्थ नहीं करते हैं तो फंसेंगे मूर्ख कह जाएंगे, अब करें क्या, दोनों ओर से मूर्ख ही परिणत होंगे। तो उन्हें अर्थ पर तो किए नहीं, चुप रहे सब, सब मौन होकर खड़े रहे, महाप्रभु देखे कि ज्यादा परेशानी हो रहे हैं। तो महाप्रभु फिर बोलने लगे, बोले यही आज्ञा पाया नाम लय अनुक्षण, नाम लयते लयते मोर भ्रांत हईल मन। बोले चलो आप नहीं श्लोक का अर्थ नहीं बताते हैं, अलग बात है, लेकिन मैं तो नाम करने लगा और नाम करता हूं तो मेरा मन पागल हो गया, बिगड़ गया। तब उन लोग तो पागलपन क्यों कर रहे हैं, इसे नाचते गाते रोड में क्यों, नाम करता बैठकर चुपचाप करो, है ना? नहीं बैठ करके चुपचाप आसन मार करके इसे करते रहो, क्यों बोलेंगे? मैं देखा हूं कभी कभी हमारा मंदिर में भी कोई कोई ऐसे ऐसे करते हैं, अब कोई कोई आके चेतावनी देते हैं, तब फिर ये ऐसे करते रे, बाप रे बाप, कोई नया आकर कोई मंदिर में सब कोई गेस्ट आते हैं, देखते हैं क्या भूत प्रेत पिशाच ग्रस्त नहीं हुए, कोई किसी को भूत सवार हो जाता ना, वो ऐसे होते हैं। मेरे तो अच्छा खासा ड्रेस पोशाक होता, अच्छा लगता है, इसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भूत किसी भी सवार हो गया उनको। यार घोस्टली हंटेड बाबा, भागो यहाँ से, डर के भाग जाएंगे कोई गाड़ी क्या हो गया। ये क्या भूत प्रेत सवार हो गया। तो ये रास्ता में जाके सड़क में इसे नाचते गाते, ये क्या हटी दिस। तो महाप्रभु बोले कि मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा होना नहीं चाहता था। धर्ज्य धारित नारी हैराम उन्मत, हासी कंदी नाची गाई जय छे मदमत। बोला मैं तो नाम जप करना चाहा, जैसे नाम जप करना थोड़े दिन शुरू किया तो पागल हो गया, कभी हंसता हूं कभी नाचता हूं कभी गाता हूं, उन्मत्त हो गया ना। तो फिर ट्रीटमेंट नहीं किया आपने पागल कौन के लिए। तबे धर्ज धरी मने करिलाम विचार। तो कब कभी लोग डांट रहे थे मुझे, विचार किया आप जैसे लोग भद्र लोग मिल जाते कभी बोलते, तो विचार किया मन में। कृष्ण नाम ज्ञान अच्छन्न हैल अपार, ये कृष्ण नाम में मेरा बुद्धि अच्छन ज्ञान अच्छन हो गया, मूर्ख ऐसे हो गया कि मेरा पागल हो गया मने। पागल हैलामी धर्ज नाही मने, ये तो चिंती निवेदिलाम गुरु चरण। तो बोले बोले तो गुरु के पास नहीं गया फिर पूछने के लिए, ऐसा क्या गड़बड़ मंत्र दे दिया भाई पागल हो गया मैंने। बोला मैं गया था आप जैसे लोग को मिलकर मुझे बहुत सिखाए, तो मैं दोबारा गया गुरु जी के पास, जाकर बोला गुरु जी के पास बोला कि वा मंत्र दिला गोसाई कि वा तर बल जपिते जपिते मोले करिला पागल, ये क्या मंत्र दे दिया मुझे, उसको जप कर रहा हूं तो पागल हो गया मैंने, कुछ गलत तो नहीं दे दिया। हासा नाचाए मोरे कराए क्रंदन, ये तो सुनी गुरु मोरे भरीला वचन। तो फिर क्या बोले जब ऐसे पागलपन बात किया, तो गुरु जी बोले नहीं आपको कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे बंद बंद करना चाहिए सब नहीं। गुरु जी ने क्या बोले फिर, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तारा कृष्ण उपजय भाव। ये तो कृष्ण नाम का स्वभाव तो यही है, जो इसको जप कर रहा है उसका ही स्वभाव ही है, ऐसे ही होते हैं, यही स्वभाव है। कृष्ण विषय क प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। अब आगे आगे कृष्ण नाम का महिमा बहुत बताएंगे। तो ये उनको प्रूव कर दिए कि मैं जाकर पूछा था कि मुझे क्यों पागल हुआ, बोले कि कृष्ण यही मंत्र का तो ही स्वभाव है ना। फिर ना गुरु जी ने बोले कि कृष्ण चैतन्य मैं तुझे मंत्र दिया, मैंने मंत्र का अभी तक सिद्धि नहीं कर पाया, तुझे सिद्धि हो गया। मंत्र का सिद्धावस्था में यही स्वभाव होता है, मंत्र जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो ऐसे ही पागल की तरह उन्मत्त होकर नाचते हैं गाते हैं। तो भागवत से एक श्लोक भी उदाहरण किए कि कृष्ण नाम का सिद्धि जिसका नाम हो जाता है, भागवत में एकादश स्कंध में कहा गया, एवं व्रत स्व प्रिय नाम कृत्या जातानुरागो रुदचिद्रुतचित्त उच्चै हसति हसत्युत्थरोदति रोति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकवाह्य। बोले ये जो कृष्ण नाम करते हैं, कृष्ण नाम में जिसका निष्ठा रुचि आ जाए तो उनका यही गात होगा, यही पागलपन से होगा, वही हो रहा भागवत में इसे कहा गया है ना। और कृष्ण नाम के महिमा में धीरे धीरे सारे वेदांत में उपनिषद में सार सीधे से लग प्रमाण करें उनके सामने दिखा दिए कि यही सार सर्वस्व है, यही करना कर्तव्य है, और उसको करने से अगर सचमुच कोई उसका सिद्धि तक पहुंचा है तो उनका यही दशा होता है। तो ऐसे समझा दिए स्टेज के ऊपर में, तो सारे कुछ सारे आगे बड़े उनके सुनेंगे और पूछेंगे, बातचीत होगा, बातचीत करते करते और कुछ मीटिंग ना कुछ भंडारा कुछ होगा, भंडारा खाने से पहले सा मुंडित मस्तक तो पहले थे, आप तिलक मिटा करके इसे तिलक के और कंठी लेकर के माला हाथ में ले। थोक होलसेल में हजारों एक साथ में बने चले। तो महाप्रभु यहाँ कृष्ण नाम की महिमा को प्रमाणित करते हैं। जो बड़े बड़े प्रकांड सन्यासी वेदविद, जो बड़े बड़े ध्यानी है, बहुत वेद पाठ करके, उपनिषद पाठ करके, इतने तपस्या कर रहे थे, इतने व्रत नियम आदि पालन कर रहे थे, बोले सारे छोड़ करके हरे कृष्ण महामंत्र सारा सर्वस्व सुग्रहण करो, है ना? नहीं, अब महाप्रभु का जब पूरे चरित में जहां जहां उन्हें शिक्षा दिए हैं, हर शिक्षा में हम सार यही देखते हैं कि महाप्रभु मौका पाकर सबको बोलते हैं कि निरंतर लया तुम्ही कृष्ण नाम, हमेशा कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण कीर्तन करो बोलते हैं। कभी कभी मुझे कोई लोग पूछते हैं कि महाप्रभु जप के बारे में थोड़ी कहे, नाम कीर्तन के वाले कहे, कीर्तन करने के लिए जप के बारे में नहीं कहे। नहीं, जप के बारे में कहे हैं, इसी जो अभी हम बोले ये कहना कि जप के बारे में कहना नहीं, वेरी पर्टिकुलरली यहां जप शब्द कहे, जप गया कृष्णा मंत्र जप करने के लिए बोले। जब महाप्रभु वृंदावन आए थे, श्रीधाम वृंदावन, आपने लीला काल में एक बार वृंदावन आए थे महाप्रभु, एक महीना के आसपास रुके थे, मार्गशीर्ष मास में वृंदावन धाम में जब रुके थे महाप्रभु, अक्रूर घाट में रुकते थे, तो उनका ये था कि वृंदावने आसी वसी स्थान एकांत मध्यान्न पर्यंत हरिनाम जाप करे मध्यान्न पर्यंत, ये लिखा है इस चेतन चेतामृत में कि एकांत में बैठ करके नाम कीर्तन मध्यान्न पर्यंत करते। एकांत में कोई कीर्तन करते हैं क्या? एकांत में क्या करना होता है? जब करना होता है। एकांत में बैठ करके सुबह से नून तक मध्यान्न पर्यंत कीर्तन करेंगे, तृतीय पहर में दर्शन देंगे, और दर्शन देंगे तो लोग क्या उपदेश करते थे, कर कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण जप नाम जप कीर्तन नाम जप करने के लिए उपदेश देते थे, और स्वयं दो पहर तक द्वितीय प्रहर तक जप करते थे वृंदावन में रहकर। ये महाप्रभु स्वयं करते थे और लोगों को बताते थे, और बोले ठीक है नाम कीर्तन के लिए तो सभी को बताते हैं, यहां तक कि जब उत्कल से पुरी से जब मध्य भारत दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, जहां जहां जिसके घर में वो भिक्षा लेते थे, तो कुर्म ब्राह्मण से लेकर के सारे गृहस्थों को यही उपदेश देते थे, निरंतर लया तुम्हें घरे रही निरंतर लय कृष्ण नाम बोलते हैं, घर छोड़कर जाना नहीं, घर में रह करके नाम कीर्तन करो। अगर नाम कीर्तन घर में रहकर करोगे, और दूसरा अगर दूसरे को भी नाम कीर्तन करने के उपदेश देंगे, तो घर का जो विषय जंजाल आपको बाधित नहीं करेगा, और फिर अवश्य मुझे प्राप्त करोगे, ये उपदेश देते थे उनको। तो हमेशा महाप्रभु सभी को यही शिक्षा देते थे कि कृष्ण नाम जप ही सभी कार्य का, सारे धर्म का, सारे शिक्षा का, सारे विद्या का, वेदांत का सबसे सार सर्वस्व है, तो इसको जप करना चाहिए। चाहे आप किसी भी आश्रम में रहो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सभी के लिए और सभी प्रकार से एकमात्र यही महान काम है, हरे कृष्ण मंत्र को यथाशक्ति जितनी ज्यादा से ज्यादा जप किया जाए, कीर्तन किया जाए। अभी आप बोलते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम इसको करेंगे ना और कुछ करेंगे, है ना? नहीं, तो यदि गृहस्थ को भी कहे जप करने के लिए, सन्यासी को बोले जप करने के लिए, और जो वानप्रस्थ है उनको बोले जप करने के लिए, तो हमारा ये काम नहीं है क्या? हमारे लिए तो यही काम है ना? नहीं, ब्रह्मचारी लोगों के लिए शास्त्र में कहा गया, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसति दांत गुरुर हितम। ब्रह्मचारी लोग घर में नहीं रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? गुरु गृह में रहना चाहिए। किस लिए रहना चाहिए? गुरु को हित करने के लिए रहना चाहिए। उनके आज्ञा पालन करने के लिए रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए ना, दान तो मतलब इंद्रिय संयम करके रहना चाहिए, बहुत संयम, सेंस कंट्रोल करना चाहिए कड़क से, और उनके हित के लिए कार्य करना चाहिए। गुरु के हित क्या है, उनके अनुकूल ना उनके आदेश को पालन करना चाहिए। तो ये साक्षात गुरु के गुरु जगत गुरु महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि सर्वावस्था में सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, हरि नाम की जप कीर्तन। तो वही किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान में करणीय है, वही करना चाहिए। तो सभी को यही अंतिम गुरु आदेश है, तो उसी को पालन करना चाहिए, उसी को करना चाहिए। बाकी अनेक प्रकार के सेवा है, सब कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को पूछा जाए वास्तविक हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं गुरु जी को, अगर पूछा जाए तो अंतर से कहेंगे कि इफ यू बी ए रियली गुड डिवोटी देन आई विल प्लीज। तो गुड डिवोटी का लक्षण क्या है, जो गुड चैंटिंग करता है, यही उसका। इसलिए हम लोग सभी का दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हरिनाम चैंटिंग। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो सेवा सबसे पहले किया जाता है, उठ करके भगवान के दर्शन करके भगवान को प्रणाम करके मंगलारती करके सबसे पहले क्या काम करते हैं, अपनी जप क्लास, भागवत क्लास, ये पूजा, जो जो सब कुछ बाद में, सबसे पहले जप क्लास, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है ना नहीं? वो हम लोग के लिए जब हम गृह संसार और नाना प्रकार के चीज को त्याग करके त्यागी वेश धारण किए हैं, तो हमको तो और महत्व दे करके और ढंग से इसको करना चाहिए, यही परम कर्तव्य है ना नहीं? अगर ब्रह्मचर्य जीवन में हरि नाम के जप को हम ठीक से नहीं कर पाए तो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाया, फिर गड़बड़ हो गया, बाकी आप जो भी कुछ करो उसका कुछ मूल्य नहीं रहा, है ना नहीं? जब नीचे फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहा उसके ऊपर में 5 मंजिल खड़ा कर दो, टिकेगा, गिर जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम जो है बाकी 4 आश्रम का फाउंडेशन है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये तो ऊपर का आश्रम है ना, बिगिनिंग जो स्टेज है, ग्राउंड फ्लोर जो है ब्रह्मचारी है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर स्ट्रांग नहीं हो तो ऊपर अपर फ्लोर टिकेगा कैसे? तो स्ट्रांग होने का जो कंक्रीट जो स्ट्रांग पर किस तरह आएगा, इफ यू आर स्ट्रांग इन चैंटिंग, यही साधना का सार है, यही सार सर्वस्व साधना का। अगर हम हरि नाम को, अगर चैंटिंग को बड़े मजबूत कर पाए, बड़े ढंग से कर पाए, तो हमका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। उसके ऊपर किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी सेवा कीजिए, कहाँ तक भी चले जाइए, अब चलेगा, 25 मंजिल भी चला लीजिए चलेगा, अगर स्ट्रांग फाउंडेशन हो तो। अगर ये ठीक नहीं है तो सब गिर जाएगा, कुछ नहीं। तो इसलिए विशेष करके ब्रह्मचर्य जीवन में हरिनाम जप का बहुत महत्व रहता है। इसी जीवन में जो जितने बढ़िया से, जितने ढंग से, जितने ध्यान से, जितने मनोयोग से, एकाग्र भाव से जप कर लिया, सो कर लिया, आगे चल करके फिर अगर दूसरे दूसरे आश्रम में गए या दूसरे दूसरे पोस्ट पोजीशन में चले गए, दूसरे स्थिति में आ गए, तो फिर नहीं हो पाए। जैसे जैसे आप जानते हैं हम जप करते हैं, सुबह सुबह अगर जप पूरा हो गया तो हो गया, नहीं तो जैसे घंटा को घंटा दिन बढ़ता है तब टाइम को टाइम बढ़ता है। जो सुबह माला करते हैं 7 मिनट में एक माला जप 8 मिनट तक हो जाता है ना नहीं? 8-9 बजे तक तो यही से चलेगा ये रूल, फिर 10 बजे के बाद वही माला अभी 10-12 मिनट तक चलेगा, वही हाथ में, वही भीड़ बैग में, वही भीड़ में करेंगे 12 मिनट, 12 बजे के बाद करो 15 मिनट लगे, और शाम को तो खत्म ही नहीं होता, तब से माला रहे घुमा रहे, पूरा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा ऐसे ऐसे हाल खराब होते जाएगा, क्योंकि तमगुण के रजोगुण के प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, बड़े होते चले जाएं, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ रहा है, ब्रह्मचर्य जीवन यही बालक स्टेज, बिगिनिंग स्टेज है, तो इसी स्टेज में अगर हम एकाग्र भाव से नहीं कर पाए तो फिर जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ऐसे ऐसे गुण के प्रभाव ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएगा, तो फिर तो नहीं कर पाएंगे। जहां बाल काल में जो नहीं होगा, फिर काल काल में पाखरा बाल में फिर नहीं होगा, है ना। नहीं ऐसे कहते हैं, जब कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है, बिगनी में कोई बनाता है, जिसे मिट्टी गिला रहता नरम रहता है, गिल्ला मिट्टी में जो डिजाइन देना है वो डिजाइन फिर रह गया, फिर सूख जाने के बाद फिर होगा, फिर टूट जाएगा लेकिन मोड़ेगा नहीं, टूटेगा लेकिन मोड़ेगा नहीं। तो इसी ब्रह्मचर्य लाइफ में अगर हम चैंटिंग को ठीक भाव से नहीं कर पाए, उसी में हम अपना जो अपना स्थिति प्राप्त करना चाहिए, ग्रेजुएशन प्राप्त नहीं कर पाए इसी पीरियड में, तो आगे चलकर तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये ब्रह्मचारियों के लिए सुवर्ण सुयोग है ना। नहीं बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से, बड़े एकाग्रता से चैंटिंग को कर लिया जाए, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, ऐसे ऐसे समस्या और सामने आएगा। तो इसलिए देर ना करके जब तक हम रहे पीले में रहे और अच्छा, लाल में आए और थोड़ा कच्चा, तो इसलिए और आगे चल जाए सपने फिर और कुछ हो जाएगा, है ना। नहीं तो बच्चा हो जाएंगे तो फिर तो क्या बात है। तो इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए हरि नाम जप का सबसे ज़्यादा महत्व है ना। नहीं अब उसको हम जब यत्न सहकार कर पाए, वही आपने जीवन का सर्वस्व है, वही हमारे भजन के सर्वस्व है, वही हमको लक्ष्य प्राप्ति से साधन मार्ग पर पहुंचा देगा। हरे कृष्ण। ओके एनी क्वेश्चन। अंत में एक महाप्रभु का एक उपदेश पढ़ के सुना देंगे आपको, एक बार सुन लीजिए उसको, ये नहीं करेंगे हमने। ये चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत से लेकर के लिखा गया है, श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कही राम यही महामंत्र, यहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, यहा है ते सर्व सिद्धि हई वे सवार, सर्वक्षण बल इथे विधि नाही आर, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, जदि आमा प्रति स्नेह थाके सवाकार, तवे कृष्ण व्यतिरके नागाइवे आर, साध्य साधन तत्व जे किछु सकल, हरि नाम संकीर्तने मिलिबे सकल, संकीर्तन हैति पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेम उद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन, जे रूपे लईले नाम प्रेम उपजय, तारा लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम राय, उत्तम हया आपना के माने तृणाधम। ये कैसे जप करने से प्रेम प्राप्त होता है, उसके लक्षण महाप्रभु साक्षात बताते हैं। उत्तम हय आपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, वृक्ष जे न काटिले ह किछु ना बोलय, सुकाया मैले हे कारे पानी ना मागय, जे जे मागय तारे दे अपना धन, घर्म वृष्टि सहे आने रे करे रक्षण, उत्तम हया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, ऐ मत हया जयी कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय, हर्ष प्रभु कहे न सुना स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, सहित सुमेधा पाय कृष्णेर चरण, नाम संकीर्तने हय सर्वानर्थनाश, सर्व शुभोदय कृष्णे प्रेमेर उल्लास। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ন প্রকার কে নবিধা ভক্তি হে সারে ভজন কে যে প্রণালী হে সে নবিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হে উস তার মধ্যে সর্বশিষ্ট নাম সংকীর্তন নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেম ধন ইস ন প্রকার সে শ্রেষ্ঠ কোন হে নাম কীর্তন নিরপরাধে নাম লইলে প্রায় প্রেম ধন অবিশ্রান্তি নামে নাম অপরাধ যায় তাহে অপরাধ কবু স্থান নাহি পায় বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ বিনু কহ কিছু না ভাবিহ আন কি ভোজনে কি শয়নে কি বা জাগরণে হর নিশ্চয় চিন্তা কৃষ্ণ বল হ বদনে গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্তা না কহিবে ভালো না খাইবে আর ভালো না পারিবে অমানি মানদ হইয়া কৃষ্ণ নাম সদা লবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মান সে করিবে অমানি মানদ হইয়া কৃষ্ণ নাম সদা লবে হমেশা অমানি ওর মানদ হো করকে কৃষ্ণ নাম লেনে কা ইয়ে ফাইনাল ইনস্ট্রকশন মহাপ্রভু কা হে ওর এই ইনস্ট্রকশন মোস্টলি লাগু হতা হে হাম লোক কে লিয়ে হে না নেই জো আপনে আপকো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কা পরিচয় দেতে হ্যাঁ মহাপ্রভু সঙ্গে না যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার তবে কৃষ্ণ ব্যতিরকে নাগাইবার ওর কিছু নেই কেনা আগর মেরে টিম মে আপ হো তো ওই হরে কৃষ্ণ এনি কোশ্চিন Yes. Kya? Kya bolte hare naam? Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Kya taklif kya hai? ওরে বাপা আচ্ছা উচ্চারণ মে গলতি কে বাত পুছে রাম কহে ইয়া রাম কহে হে না নেই কুছ ভি কহো চলেগা হে না নেই কুছ ভি কহো চলেগা আপকা নাম ক্যা হ্যায় অভিষেক তো আপকে মাতা পিতা অভি রে অভি আপনি শুনেগা তো ফির দো লিটার তো উচ্চারণ নেই কে তবি শুনতে তো এসমে ক্যা চাহে রাম কহো চাহে রামা কহো চাহে রামায়া কহো কুছ ভি করো শুনেন ভগবান সমস্ত মেরে লিয়ে কহতা হ্যাঁ না কে ফরক অলগ অলগ প্রান্ত কে লোক কা উচ্চারণ অলগ অলগ হতা কোই কৃষ্ণ বলতে কোই কৃষ্ণ বলতে কোই কিষণ বলতে কোই কৃষ্ণ যে কৃষ্ণ শুনতে এসে কে ফরক নেই হ্যাঁ না মূর্খ বদন্তি বিষ্ণবে পণ্ডিত বিষ্ণায় না মূর্খ বিষ্ণায় পণ্ডিত ও গ্রামাটিক্যাল ইসকু নেই দেখতে ভগবান ভাবগ্রাহী জনার্দন ভগবান ভাব কো গ্রহণ করতে আপকে রাম বলো রাম বলো রামা বলো কুছ ভি বলো অগর আপ রাম কে লিয়ে বলতে তো শুনেগে হ্যাঁ না উচ্চারণ সে কোই প্রবলেম নেই গুড উনকো ধীরে সে করলে সে নিন্দ আতা হয় জোর সে করলে সে লোক বাকি ডিস্টার্ব হতে হ্যাঁ তো আপকো আগর ধীরে সে করলে নিন্দ আতা হয় তো ফির আপ উঠ করকে চলকে করো নাই তো হট করকে অলগ জায়গা জোর সে করো যে এক দূসরে কো ডিস্টার্ব না হো আর আপকো টার্ব হো আপকো ডিস্টার্ব নাহি হো
সহি হ্যায় কি নাই জেসে মে করতা হুঁ তো বো বো বো
নেই এসা মত করো এসা করলে সে জানতে না নাম ওর নামই অভিন্ন হয় হাম বলতে রাম রাম মিন্স ভগবান রাম স্বয়ং হি ইজ দেয়ার আর ভগবান রাম সাক্ষাৎ ভগবান আপকে সামনে আ যায় আপ উনকো সম্ভ্রম হো করকে প্রণাম করেঙ্গে না উনকে সামনে এসে ভূত প্রেত সামনে এসে ব্যবহার করেঙ্গে বাবু বলে ভাই ইয়ে ক্যা কর রে ভূতসওয়ার হো গিয়া ক্যা উসকো আপ কোই ভদ্রলোক কিসি ঘর মে গয়ে হ্যায় কোই আপকে বড়ে আচ্ছে গেস্ট আয় उनके सामने ऐसे ऐसे करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, रहेगा बोले बाप रे बाप क्या करेगा, तो इसलिए नाम ही तो भाग जाएंगे फिर, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा करो ताकि वो बोलेंगे मुझे बुला रहा है कम, बुलाओ ऐसे 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 सर में सिंग लगाएंगे क्या, ऐसे ऐसे मत करो, है ना। नहीं प्यार से बोलने से नींद आ जाता है, तो नींद को हटाने के लिए व्यवस्था ऐसा ऐसा करना, नींद को हटाने के लिए खड़े हो जाओ, चल करके करो, थोड़ा और कोई और प्रकार उपाय करो, है ना। नहीं आप देखो ना कि आपके मित्र है, कोई मित्र को प्यार से बुलाने से सुनेगा, अगर प्यार से बुलाने से नींद आता है तो ऐसे ऐसे भूत प्रेत लगाकर सुनने से सुनेगा ना, किस लिए सुनेगा। यही है ना, भगवान तो कहते हैं कि व्यक्ति है, केवल नाम नहीं है तो साक्षात व्यक्ति है, तो व्यक्ति को आप पुकारते हैं तो इसी प्रकार होकर पुकारेंगे तो है कि वो डर जाए, कोई भी डर जाएगा, तो इसे करो कम से कम उनको तकलीफ ना हो, आपको भी तकलीफ ना हो, उनको भी तकलीफ ना हो, है ना। यस एक ही बात है, चाहे हाथ हिलाओ चाहे सर हिलाओ, है ना। नहीं
ये सर इसलिए ज्यादातर हिलाते हैं कि ताकि नींद जो आने वाला,
मैं समझ गया, बस सके। आप नींद भगा रहे हैं लेकिन और भी भाग जाएंगे लोग कोई लोग आपको देखकर भाग जाएंगे, है ना। नहीं तो इसलिए हम अगर नाम जप में, एक बहुत बड़े ध्यान की बात है, हम जिसका नाम ले रहे हैं वो सख्यात नाम में ही है, सख्यात नाम में ही स्वयं भगवान है, अगर जब तक ये बद्धमूल भावना नहीं होगा हमारा तो हमारा नाम सब ठीक से जप नहीं हो पाएगा, तभी तक नहीं हो पाएगा। जब तक हम नाम और नामी स्वयं है ये बात हम पक्के अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक हमारा नाम जप इनकम्प्लीट ठीक नहीं हुआ अभी तक, जब तक नाम ठीक हुआ तभी होगा, जब तक व्यक्ति करके मान लिए तब फिर जैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए अब जानते हैं, है ना। कोई सम्मानीय व्यक्ति आपको बुलाए आपके सामने है, उनके साथ कैसे व्यवहार करें, उनको बुलाकर सामने खड़े हैं आप सो जाओ थोड़ी अच्छा लगेगा, नहीं नींद आता है लेकिन अब नींद आता है तो नींद को व्यवस्था करो, कैसे नींद ना आवे इसके उपचार करो, है ना। नहीं और उनको प्रार्थना करो, दूसरी उपाय करो नींद को भगाने के लिए, नहीं इस प्रकार ना करो ताकि खोट ये हो जाए, है ना। ऐसे माला छींच हिला करके, हाथ हिला करके, सर हिला करके, हिला कर करने से वो करते हैं लेकिन इसे नट द्विधि ये प्रफुल्ल उससे ताछा करके। प्रभुपाद जी ने जप वॉकिंग चलते चलते उनको नहीं जा जाता क्या उसमें और कई उपाय किया जा सकता नींद को भगाने के लिए। कल मुझे किसी ने पूछ रहा था आपके मंदिर के नहीं, बॉम्बे मंदिर के ब्रह्मचारी, बोले ये बड़ी समस्या है, छः सात घंटा सोने के बाद भी फिर नींद आ जाता है तो क्या करें। मैं बोला छः सात घंटा सोने के बाद में अगर नींद आता है, वो नींद के लिए नहीं, ये आपका आलसीपन है, तो उसके साथ हमको फाइट करना पड़ेगा। अगर सरेंडर कर लिए कि नींद ज़्यादा सता जाके सो लूँ, तो आप नींद को सरेंडर कर लिए फिर वो नींद कभी आपको छोड़ कर जाएगा नहीं, हमेशा आपको सताएगा। कुछ दिन तक उनके साथ संग्राम करो, उसी समय में नींद आता लेकिन उसके पहले छः सात घंटा सो जाओ, आपने छः सात घंटा नहीं सोते हैं नींद आता है आलसी आता तब तो फिर आपको सोना पड़ेगा, क्यों एटलीस्ट इतना शरीर को, हम अभी इतने तो देहात बुद्धि से परे नहीं गए, शरीर को साथ नहीं रखेंगे तो हमारा कोई साधन भजन नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट हमारा साधन भजन में फर्स्ट प्रिफरेंस वी शुड गिव टू आवर बॉडी, है ना। नहीं फर्स्ट हेल्थ देन साधन देन सेवा, है ना। नहीं तो शरीर को देखना जितना जितना आवश्यक रेस्ट उतना देना चाहिए, उसके बाद फिर अगर आलस्य आता है, नींद आता है, तो इसके लिए उपचार करो, चल के करो, बार बार थोड़ा जा करके मुंह धोकर आ जाओ, कुछ करो खड़े होकर, कई अलग अलग प्रकार के पहले ज़माने में जो गुरुकुल में पढ़ते थे स्टूडेंट लोग, नींद आजकल नहीं आता, तो पहले ज़माने में आया करता था लोगों को। ऐसे वर्णन आता है कि जो सिखा रखे ना, ऐसे खिल लगा देंगे दीवार में, और सिखा को इसमें बांध देंगे, टाई अप कर देंगे, कोई धागा फागा लगाकर बांध देंगे, बांध देंगे, फिर बैठ के जप करेंगे, अगर एक झोंक आया तो लगेगा, जैसे कोई आपके चूटी खींच लिया सिखा, तो लगेगा, नींद खुल जाएगा। एक बार, दो बार, तीसरे बार को इतने लगे, मतलब ऐसे दर्द करेगा, पूरा ये लाल पड़ जाएगा, तो आपको लगेगा कि उखड़ गया क्या सर, नींद क्या, नींद के बाप भी नहीं आएगा। तीन बार झोंका लगने के बाद आप खोलो मत, तीसरी बार झोंका लगेगा ना, आंख से करंट निकल जाएगा, नींद तो कभी स्वप्न में नहीं आ सकता। अब करके देखिए, ये आजकल का नहीं, ये जो वैदिक युग में जो गुरुकुल था, इन्हीं के अभ्यास में बता रहा हूं, हाँ, जो पहले जमाने में, आज से हजारों साल पहले, जो स्कूल कॉलेज थाने जब गुरुकुल में पढ़ करके गुरुजी पाठ देते थे, क्योंकि तभी तो पुस्तक नहीं होता था, खाता पेन नहीं होता था, सब श्रुति विद्या याद करना पड़ता था, याद बैठे बैठे याद करना पड़ेगा। आजकल तो कंप्यूटर चला देते, याद करना कोई जरूरत नहीं, लेकिन तभी याद करना ही पड़ता था, मेमोरी में लेना पड़ता, तो जब सो जाएंगे तो कैसे होगा, तो इसलिए सिक्का बांधते थे, सबको अपना अपना खेल काट के बांधते थे। आप आज भी करके देखिए, और सिक्का का कौन सा उपयोग तो कीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, सदा के लिए नींद भंग जाएगा, सदा के लिए आंख से करंट निकल जाएगा आपका। आप करके देखिए, फिर कभी नींद का निशान नहीं आएगा आलसी का। बाप रे बाप, पूरा कई दिन तक तो यहाँ दर्द रहेगा। हाथ नहीं लगा सकते, इतने दर्द करे सारे सर, चार पांच झोंका आ जाए उसमें, कैसे कर सकते
हैं।
अरे टेम्पल हॉल में आने से पहले इसे कोर्स पूरा कर लो ना। कितने दिन का है? दो चार झोंक तो बात है, एक दिन में पूरा हो जाए कोर्स, दूसरा दिन का आवश्यकता नहीं है ना, एक दिन में तो हम इतने झोंक ले लेते हैं, चार झोंक तो बात है, आधा घंटा मकाम, आधा घंटा, फिर कितने दिन टेम्पल हॉल में नींद बेसाद नहीं आ जाए, आधा घंटा कोर्स है। बाकी पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि जो जो बड़े बड़े राजा महाराज द्वादशी पारायण आदि करते थे, वो लोग भी बढ़ते थे पुराण सुनने के लिए, तब भी नींद आ जाता था, तो वो लोग का वर्णन आता है कि वो लोग तो सिखा बांधते नहीं थे, राजा राजोड़ा को तो सिखा नहीं रखते थे, उनका बाल बाजार, तो उन्होंने एक मटका बांध के रखते थे ऊपर में, ठंडा ठंडा पानी जैसे नीचे गिरता था उसके नीचे बैठते थे, पानी टपकता रहता नींद ना आवे ऐसे। हाँ, ये आजकल का नहीं, पहले जमाने में वैदिक युग में भी व्यवस्था रखा जाता था नींद को छुड़ाने के लिए, कई व्यवस्था किया जाता था, लेकिन हम लोग तो ऐसे राजा महाराजा नहीं कुछ नहीं, लेकिन ये तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सिखा सबके पास है, उसका कम से कम मिनिमम यूज तो करना चाहिए इतना, ताकि सिखा का भी याद रहे और हमको याद रहे और नींद तो भाग के जाए। आप एक बार करके देखिए, कितने दिन तक फिर नींद आपके पास नहीं है मुझे बताना, नाम निशान मिला जाए। नींद पसार तो वो तो सुने का स्टेप है। प्रभुपाद जी ने जप क्लास में हमें सब सुनो बोलते हैं, सीट प्रपल्ली, सीट प्रपल्ली, उसका मतलब क्या है? अगर ठीक से बैठेंगे सीधा तो नींद आएगा कैसे? नींद आने का मतलब लुढ़क जाना, सीधा रह करके नींद कभी आ ही नहीं सकता, तो इसलिए बोलते हैं सीधा बैठो, सीधा बैठने से नींद नहीं आ सकता, नींद आने से आप बेंड हो जाएंगे, बेंड होना मतलब आलसीपन आया, पसारा मतलब और 50% आ गया, फिर दूसरा हाथ पसार तो मतलब गया फ्लैट हो गया, हो गया कि पसारना नहीं, बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए। लेकिन हाँ, सीधे बैठे क्या है, दो सेकंड में ही बेंड हो जाएंगे, नींद आ जाता, तो इसके लिए उपचार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने कुछ 6-7 घंटा रेस्ट दो, उसके बाद में फिर अगर नींद परेशानी करता है तो ये कोर्स करो, है ना, तब देखना, जब तक दर्द रहे तब तक तो नींद ना आए, दर्द मिट जाए फिर बार एक बार कोर्स कर लो, फिर तो ऐसे 2-4 बार करने से फिर अभ्यास हो जाएगा, फिर नींद नहीं सताएगी, है ना। तो इसे भूत प्रेत सवार होकर के इसे को मर करो मत, ताकि दूसरे भी डर के भाग जाए, तो है ना। अगर सभी बताओ, इतने सारे 50 ब्रह्मचारी अगर सब ऐसे सीधा स्ट्रेट बैठ करके बिना किसी को आंख में नींद आए फटाफट जप करते हैं तो आप तो करेंगे सही, दूसरे कोई देख लेकर रास्ते में जाते वो भी प्रभावित हो जाओ, वाह क्या जप क्लास है ना, कितने प्रभाव। तो इसके लिए हमको तैयारी करना चाहिए, वहां ऐसे ऐसे तो उसको देखेगा तो भाग जाओ ये क्या हो रहा है ना। तो ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट कोर्स है, पहले किया जा सकता है। दूसरे है अगर एक दूसरे को चैलेंज लगाकर बैठ के जब करते हैं तब भी नींद कम आ जाते थे, वो भी चला जाता है। आप दो मित्र हो, आप दोनों पास में बैठो, वो देखेगा कि आप सोते एक नहीं, वो देखेगा आप सोते नहीं, दोनों दोनों को, लेकिन उसमें क्या होता है आप जब में नजर नहीं था नजर रहता है वो कब सोता है जब ध्यान ध्यान रहेगा कब सोता है मैं देखूंगा पकड़ूंगा लेकिन फायदा तो ये होगा आपको सुनने नहीं देगा वो, ना आप उनको सुनने देंगे ना वो आपको सुनने देगा, लेकिन यही लॉस है कि आप जब में फिर मन नहीं लगेगा है ना। तो इसलिए जब में मन लगाना चाहिए और नींद फींद का व्यवस्था पहले कर लेना चाहिए है ना। आसपास देखने से भी दृष्टि आकर्षण होता है, फिर भी इधर उधर मन जाएगा, चंचल होगा है ना। नहीं ये सब नीचे देखना इधर देखना मतलब नींद को भगाना ही नहीं है ना, इसी के उपचार है, उसके उपचार अगर हम पहले हम कर ले तो फिर काम बन जाए है ना, फिर हम ढंग से बैठ कर सकते हैं। जब तक चोटी के आसपास में दर्द ना रहे तब तक आप ठीक से बैठ सकते हैं, फिर हो जाए तो महीने दिन फिर एक बार कर लेंगे, ये सबसे अच्छा उपाय है नींद मंगाने का है ना। आप करके देखिए ना सर, बात वेरी प्रैक्टिकल है। इसे कोई मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, चुपचाप अपना घर में कबाड़ बंद कर सकते हैं, उसे किसी को बताना ही पड़ेगा है ना। लेकिन यही जिसका कोई सोने खड़ा बैठ कर जब कहता सोता नहीं मतलब वो समझ जाएगा कि वो किया तो हाथ लगाओ थोड़ा तो पता चल जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा ऐसे करेगा हाथ लगाएंगे पूरा दर्द हुआ होगा एरिया तो मतलब वो एक कोर्स किया है। ओके एनीथिंग एल्स। हाँ जी
अगर रात में अगर हम मतलब नींद अगर कम लेते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब अगर हम नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, कम नींद ले रहे हैं, 5 घंटे 4 घंटे तो उसका लॉन्ग टर्म।
तो फिर एक तो इमीडिएट इफेक्ट है कि आप कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, आरती में आलसी होगा, जप में तो नींद होगा ही होगा, बाकी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते और शरीर भी अस्वस्थ होगा। शरीर अस्वस्थ हो जाने से आप भजन करेंगे, आपको तो सब पता है जिसका थोड़ा सा बुखार हो जाए पार्किंग में डाल देते हैं मिट गया को कि बुखार है ना। तो इसलिए हेल्थ को पहले ध्यान देना चाहिए है ना। तो इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए प्रॉपर रेस्ट लीजिए, एटलीस्ट 6 आवर्स तो हमको रेस्ट लेना चाहिए है ना। आपका टाइम टेबल ऐसे एडजस्ट कीजिए ताकि 6 घंटा 6.5 घंटा आप सो जाए, उसके बाद में फिर आलसी आता है नींद आता है तो फिर उसके लिए आप प्रयास कर सकते है ना। आप 4 घंटा 3 घंटा हम गोस्वामी थोड़ी अभी हैं, जब हम कभी उस स्थिति को आ जाएं तब तो निद्राहार विहार कादि विजित उच्च अत्यंत दिन वो स्थिति अलग है, अभी हमारा स्थिति ऐसा नहीं है ना। यस
जैसे हफ्ते में 1-2 दिन हमारा सेवा थोड़ा कम रहता है उस दिन क्या होता है कि जपा में प्लानिंग
चलता है। हाँ वो कोई किसी दिन होता है मानता हूँ, जैसे जन्माष्टमी है गुरु पूर्णिमा है, लेकिन दैट इज नॉट द रेगुलर, रेगुलर नहीं, कोई कोई दिन तो होगा व्यतिक्रम, ऐसा नहीं कि हम सब 100% हो जाएंगे, व्यतिक्रम होगा तो उस दिन को छोड़ दीजिए, इट्स एक्सेप्शनल। जिस दिन आप ऐसा सेवा पड़ता है कि रात 12 बजे तक जगना पड़ता है, 1-2 बजे तक सोना पड़ता है तो उसी दिन आप दिन में सो जाओ ना, उस दिन मंगलाती भी नहीं आते आपने, एक्सेप्शनल है, फिर 6 घंटा सो जाओ फिर उठ के बैठ के जब करो है ना।
प्लानिंग चलता है मतलब जब जपा करते हैं तो ये करना है।
अच्छा, जप समय में आप कुछ प्लानिंग करते रहते हैं? आता हूँ, मैंने आता हूँ। कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। जब करते समय प्लानिंग करते हैं अपने सेवा के बारे में, गुड। इसके बारे में आप प्रभु जी लोग को और देख सकते हैं, हमको तो पता नहीं, ये सब सर्च फर्च करना सब, आजकल तो सब फटाफट सर्च कर देख लेते हैं। प्रभुपाद जी ने कई बारे में बोले, एक बार में दिल्ली मंदिर में क्लास में आप लोग थे ने, में बताया भी था, जब बॉम्बे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, हरे कृष्णा माता जी, मैं अभी क्लास में थोड़ी देर बाद फोन करूँ आपको। ठीक ठीक ठीक। तो जब बॉम्बे मंदिर का केस चल रहा था, बड़े प्रसिद्ध केस, आप जानते ना, इस लीलामूत्र पढ़कर देख लीजिए पाठ। तब तमाल कृष्ण महाराज जब बॉम्बे में थे, गिरिराज महाराज थे, उनको प्रभुपाद जी विदेश में उनको दायित्व दिए थे उनके साथ डील करने के लिए, मिस्टर एन जानते हैं, उनसे डील करने के लिए बदमाश था, तो इसे के एक गड़बड़ी काम कर दिए थे। तो जो भी बड़े टेंस चल रहा था, इतने टेंशन में रह करके जब कुछ नहीं होता था उनका, तमाल कृष्ण महाराज चिट्ठी लिखे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद मेरा तो रात में सोना क्या बिल्कुल जप नहीं हो रहा है, लिखें मैं क्या करूं, माला लेकर घूम रहा हूं लेकिन मैं इतने स्तर सवार हुआ है कि कितने प्रयास करूं जप होता नहीं मेरा, हमेशा वो चिंतन आता है। तो प्रभुपाद लेटर का जवाब दें, डोंट थिंक दैट यू आई एम ऑल्सो, मेरा भी वही हाल, तू तो बॉम्बे में, मैं तो अमेरिका में रहकर मेरा भी हाल है, मैं सोचता हूँ तुम क्या करते होंगे बदमाश, मेरा भी वही हाल है। तो मतलब कृष्ण की सेवा के लिए जो चिंतन, वो भी भजन है ना। भजन केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करना वो भजन नहीं, वो भी भजन है। भगवान की आरती करना वो भी भजन है। भगवान के लिए कुकिंग करना भी भजन है। भगवान के मंदिर की सेवा करना भजन है। भगवान के सेवा के लिए प्लानिंग बनाना भी भजन है। उसके मन में सोचना भी भजन है। अगर आप जप करते समय सोचते, दैट इज नॉट बैड, लेकिन दूसरा कुछ ना सोचे, पॉजिटिव थिंकिंग, अगर कुछ सेवा के लिए प्लानिंग करते हैं, दैट्स ऑल राइट, चलेगा, है ना। कृष्ण अंतर्जाम ये समझते हैं, लेकर रहा है क्या करेगा, मन तो उनमें लगा है ना। और कुछ? यस, आप भी बोलते हैं क्या? अच्छा, कई जगह में करते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं। ये तो शास्त्र में कहा गया, उल्टे नाम जपते जग जाना, फिर भय ब्रह्म समाना। जब रास से उच्चारण न करे, म से उच्चारण करके जब इतने बड़े परिवर्तन हो गया, तो पहले राम बोलो चाहे कृष्ण बोलो, बात एक ही है ना, नहीं उससे क्या फर्क नहीं पड़ता, महामंत्र तो गाते हैं ना, नो प्रॉब्लम। ओके, प्रभु जी आदेश, आज्ञा दे। आपका इसे महत्वपूर्ण विषय था जिसके लिए इस कुलांगार को डाल दिया, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे इसके बारे में। अपना स्वयं का साधन भजन ठीक नहीं है, हम क्या आपको बताएंगे साधन भजन के बारे में। लेकिन जो आदेश देते हैं वही शक्ति देते हैं, तो इसलिए कुछ इधर उधर बाचालपन में बोलबाल दिए, जो भूल त्रुटि हो तो अपने गुण से माफ कर दें। हरे कृष्ण।